الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم صدق الله العظيم. آج کی اس روحانی تربیتی نشست میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق بیان کریں گے. خالق کائنات نے قرآن کریم میں جتنے واقعات بیان فرمائے ہر ایک میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے. یہ محض قصے کہانیاں نہیں. آپ کوئی رسالہ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ڈائجسٹ دیکھیں، اس میں کوئی کہانی آپ پڑھتے ہیں، اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ جھوٹے ہونے کا احتمال زیادہ ہے. بہت کم ایسے واقعات ملیں گے کہ جو بالکل اتھینٹک ہوں، بالکل سچے ہوں. لیکن قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں سب کے سب سچے. بلکہ ہمارا تو ایمان ہے اور یقین کامل ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ جسے غلط کہا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے سبق حاصل کریں، اور خالق کائنات ان کے ذریعے ہمیں جو درس دینا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات ہیں، خصوصاً وہ جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، جو اہل طریقت اور اہل محبت ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ محض کسی ڈائجسٹ، کسی رسالے کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں یا ترجمے والا قرآن لے کر پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے. جن آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پہلے ان کا ترجمہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها، اور وہ جو گزرا ایک بستی سے جس کی چھتیں ان مکانوں پر ڈھئی ہوئی تھی، یعنی گر گئی تھی. اس گزرنے والے نے جب اس منظر کو دیکھا تو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قالا، اس نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. زندگی سے مراد یہ کہ اس کو دوبارہ آباد کیسے کرے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں، ہر واقعے میں، ہر درس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہے. ان آیات بینات کا پس منظر، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، فلسطین، بیت المقدس، آپ جانتے ہیں پرانا قدیم شہر. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصرہ. نصرہ کہتے ہیں بت کو. ان کا ایک بہت بڑا بت تھا. ایک دن جب وہ لوگ آئے اس بت کی عبادت کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے، तो उन्होंने उस बुत के पास एक नौ मौलूद लड़के को पड़ा हुआ पाया, बच्चा छोटा सा। उन्होंने इसको उठा लिया, उसकी परवरिश शुरू कर दी। उनको ये नहीं पता था ये कहां से आया, ये किसका बच्चा है, किसने यहां लाकर डाला, उसके मुताबिक कुछ नहीं जानता। जाहिर है एक नामालूम बच्चा वहां पड़ा हुआ है तो किसी को क्या पता कि किसने लाकर डाला। उन लोगों ने उसकी परवरिश की और उसका नाम रखा बुख्त नुसर्रा, यानी बुत का बेटा। उस बुत के पास पड़ा हुआ मिला था ना, तो यही नाम रख दिया। ये पलकर जवान हुआ, एक बादशाह का मोतमिद खास मुकर्रर हो गया। बढ़ते बढ़ते इसका ओहदा बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, बादशाह उसको तरक्की देता रहा, यहां तक कि उसको किसी इलाके का गवर्नर या हुक्मरान जो भी ओहदा था उसको दे दिया। फिर बादशाह का इंतकाल हुआ और इसने अपनी हुकूमत उस पूरे इलाके पर कायम कर ली, और न सिर्फ उस इलाके पर कि बढ़ते बढ़ते इसकी हुकूमत रूए जमीन पर हो गई। यानी वो बादशाह जिनकी हुकूमत रूए जमीन पर थी उनमें से एक बुख्त नुसर्रा भी था, ये काफिर था। अब इसने क्या किया, फलस्तीन पर हमला किया। वो दौर हजरत उजैर अलैहि सलाम का दौर था, अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर। जब इसने फलस्तीन पर बैतुल मुकद्दस पर हमला किया तो वहां 3 लाख अफराद रिहाइश पजीर थे, यानी उस शहर में रहते थे। बुख्त नुसर्रा ने क्या किया, 1 लाख अफराद को कत्ल कर दिया, जिसमें मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब शामिल, 1 लाख को कत्ल किया। और 1 लाख को मुल्क के शाम में इधर उधर कहीं ले जाकर आबाद कर दिया, यानी इस शहर से बाहर निकाल दिया। और बकिया जो 1 लाख थे उनको लौंडी और गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। उस जमाने में ये लौंडी गुलाम का रिवाज था ना, उनको अपने साथ ले गया। इस तरह 3 लाख अफराद जो थे ये सलूक उनके साथ हुआ। और इस शहर को यानी बैतुल मुकद्दस को बिल्कुल मिसमार कर दिया, उसकी छतों को गिरा दिया, दीवारों को गिरा दिया, मकानात को तोड़ दिया, बाजारों को वीरान कर दिया, सब इमारतें मिसमार कर दी, यानी पूरा शहर जो था वो तबाह बर्बाद हो गया। हजरत उजैर अलैहि सलाम उन 1 लाख में शामिल थे जिनको इसने लौंडी गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया, बुख्त नुसर्रा। फिर इसका इंतकाल हुआ, मर गया। हजरत उजैर अलैह सलाम कैद से रिहाई पाने के बाद वापस आए। इंसान जहां रहता है उस जगह से मोहब्बत करता है, जिस घर में रहता है उससे मोहब्बत होती है, जिस इलाके में रहता है उससे मोहब्बत होती है, जिस शहर में रहता है उससे मोहब्बत होती है, जिस मुल्क में रहता है उससे मोहब्बत, एक फितरी अमर है। इंसान जहां पैदा हुआ उसका लड़कपन उसकी जवानी ये सब वहीं गुजरी तो जाहिर है मोहब्बत करेगा। हजरत उजैर अलैहि सलाम अपने शहर फलस्तीन की तबाही बर्बादी पर बहुत रंजीदा थे, और जब काफी दिनों के बाद कैद से रिहाई मिली तो आपने सोचा कि चलो मैं अपने शहर को देखूं जरा वहां क्या हाल। एक गधा जो था वो आपने लिया और उस पर सवार हो गए और फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। पूरे शहर का चक्कर लगाया, और जब शहर का चक्कर लगाया तो सख्त अफसोस हुआ कि ये मेरा शहर इतना हंसता बसता शहर, रौनक वाला शहर, इसका क्या हशर हो। देखा कि इमारतें गिरी हुई हैं, छतें दीवारों पर गिरी हुई हैं, दीवारें जमीन पर गिरी हुई हैं, ना कोई आदम है ना आदम जात, कोई नहीं। और कमाल की बात यह कि जितने दरख्त थे फलदार दरख्त वो सब फलों से भरे हुए, इतने भरे हुए कि उनकी टहनियां जमीन को छू रही, लेकिन खाने वाला कोई, जाहिर शहर में कोई है ही नहीं जो उन फलों को तोड़े खाए, कोई नहीं है। सब इंसानों को खत्म कर दिया, मार दिया, जानवरों को भगा दिया, सब खत्म। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया पूरे शहर का, बैतुल मुकद्दस। आपको सख्त अफसोस हुआ उसकी वीरानी को देखकर, उसकी बर्बादी को देखकर, उसकी तबाही को देखकर। बेख्तियार उनकी जबान से निकला अन्ना योही हाजिहिल्लाहु बादा मौतिहा, कैसे अल्लाह ताला दोबारा इसे जिंदा करेगा, ये तो बिल्कुल तबाह हो गया। और आप जानते हैं कि किसी चीज को बिगाड़ना जो है वो आसान है, संवारना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर कपड़े पे कोई दाग लग जाए उसको मिटाने में कितनी देर लगती, उसको रगड़ो, उस पर केमिकल डालो, और सख्त है तो और कोई चीज डालो, फिर पानी से धो, साबुन से धो, केमिकल से, तब जाके साफ हो। मेहनत है ना, सफाई में मेहनत है, और बिगाड़ने में कोई चीज उठाकर फेंक दी, खत्म, सारा लिबास खराब हो गया। किसी इमारत को तोड़ना है उसको तोड़ दिया, लेकिन बनाने में मुश्किल है। तो एक इमारत के बनाने में मुश्किल है चे जाए कि पूरा शहर बनाया जाए, पूरा शहर तामीर किया जाए। सख्त अफसोस के साथ उनकी जबान से यही जुमला निकला। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसी जुमले को जिक्र किया, अल्लाह फरमाता है काला, उसने कहा, उनसे मुराद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम, अन्ना योही हाजिहिल्लाहु बादा मौतिहा, अल्लाह ताला कैसे इसे दोबारा जिंदा करेगा, यानी कैसे आबाद करेगा। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला की कुदरत देखी, वो अपनी शान दिखाता है, वो अपनी कुदरत दिखाता है, अपनी करीमी, अपनी रहीमी, अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी रिफत, अपनी बुलंदी के करश्मे दिखाता। हमें मानो, हम कौन हैं, हमें मानो, हमें समझो, हम खालिक़े कायनात हैं। कुदरत के करश्मे, उन्होंने चक्कर लगाया, एक जगह से अंगूर तोड़ा और उसको निचोड़ कर उसका रस निकाल ली, उसको एक अपने तोशेदान में या कोई बर्तन जैसे होते हैं ना उसमें रख लिया। कुछ फल तोड़े, थोड़े से तनावुल फरमाए, बाकी रख दिए, और उस तोशेदान को उस गधे के साथ मतलब बांध दिया, जैसे लटका लेते हैं मुसाफिर, पूरे शहर का चक्कर लगाते रहे, देखते रहे, उसकी वीरानी पर अफसोस करते रहे। चक्कर लगाते लगाते जब जरा थक गए तो एक मकाम पर आकर उस गधे को दरख्त से बांध दिया। वो तोशेदान जो था वो दरख्त में लटका दिया, ऐसे उसकी टहनी में, और खुद जमीन पर आराम करने के लिए लेट गए। अब अल्लाह ताला की शान देखो, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम सोने के लिए लेटे 100 साल तक सोते रहे, एक दो साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 100 साल। कुरान ने कहा अमातहुल्लाहु मियतामिन सुम्मा बासहु काला कम लबिस, अल्लाह ने पूछा कितने देर यहां ठहरे, कितनी देर सोए। अच्छा, 100 साल के बाद जब बेदार हुए, अब उन्होंने देखा वही जगह है, वही मौसम है, मैं कितनी देर सोया, लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, एक दिन या इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो मैं नहीं सोया, एक दिन सो गया होगा पूरा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल लबिस्त मियत आमिन, आप 100 साल यहां सोए, 100 साल। और 100 साल में क्या हुआ, अच्छा वो जो गधा था जिसकी रस्सी दरख्त से बांध दी थी वो मर गया। जाहिर है जानवर को दाना पानी न मिले तो मरना तो लाजमी, कहीं भाग भी नहीं सकता, अगर खुला छोड़ देते तो इधर उधर चरता, अपना पेट जैसे पालता, जो भी था कुछ खाता पीता, जिंदा रहता। उसको बांध दिया गया था, इधर उधर जा नहीं सकता था, मर गया, उसका गोश्त पोश सब खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियां एक तरफ पड़ी, ढांचा जिसे कहते हैं ना वो एक तरफ। और कमाल की बात, जो खाना था यानी उस खाने में फल थे जो आपने तोड़े थे, थोड़े से खाए और थोड़े से रख दिए, और अंगूर का रस निचोड़ कर जो रखा था वो बिल्कुल सही था, 100 साल में उसमें कोई तगैयुर तबद्दुल नहीं आया। अल्लाह फरमाते हैं वंदुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने पीने की चीजों को देखो वो बिल्कुल वैसे ही। वंजुर इला हिमारिका वली नजालक आयतल लिन्नास, वंजुर इला निजाम कैफन शिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, अब अपने गधे की तरफ देखो, अब देखा हैरान हो गए। यानी जो चीज चंद घंटों में खराब होने वाली थी, अब आप फल को एक जगह रख दें, कहीं गर्मी में रखें खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। जो चंद घंटों में खराब होने वाली चीज थी, अल्लाह ताला ये दिखाना चाहता है उसको हमने 100 साल में भी बिल्कुल सही रखा, और जो ज्यादा देर जिंदा रह सकता था वो खत्म हो गया। ये अल्लाह की शान है, वो बिल्कुल खत्म हो गया, हड्डियां रह गई, गोश खत्म। अपने गधे की तरफ देखो, इन्होंने देखा अरे ये तो हड्डियों का ढांचा है। अब अपने खाने पीने की तरफ देखो, वो उतार कर देखा तो बिल्कुल सही, उसके अंदर किसी किस्म की बदबू भी नहीं थी। खाने में जैसे बू पैदा हो जाती है ना, आदमी खा नहीं सकता, बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि लटकाए। अब अल्लाह ताला ने फरमाया अब देखो हमारी कुदरत का करिश्मा, फंजुर इलल इजामी कैफन उनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, अब देखो हम किस तरह इन हड्डियों को गोश पहनाते हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, उस गधे की जो हड्डियां थीं वो आपस में जोड़ना शुरू हो गई खुद ब खुद, और देखते ही देखते पूरा ढांचा तैयार हुआ, और उसी आनन फानन में उन पर गोश पोस आया, और चंद मिनटों में वो बिल्कुल जीता जागता गधा खड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फलम्मा तबय्यन लहू काल आलमु अन्नल्लाह, देखो हम अपनी निशानी ऐसे जाहिर करते हैं, ये हमारी शान है, ये हमारी कुदरत है कि जिसकी हड्डियां रह गई, गोश खत्म हो गया, गल गया, सड़ गया, चंद मिनटों में हमने उसको दोबारा जिंदा कर दी। अब ये जो 100 साल सोए, इनके सोने के 70 साल के बाद एक और बादशाह बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुआ। वो तो मर गया, जिसने तबाह बर्बाद किया था बुख्ते नुसरा, वो खत्म हो गया। एक और बादशाह आया, उसने क्या किया, मुल्क शाम में जो 1 लाख अफराद थे, 3 लाख थे ना, 1 लाख को तो कत्ल किया था, और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर आबाद किया था, और 1 लाख को लौंडी गुलाम बनाकर ले गया था। तो जिनको उसने मुल्क शाम में इधर उधर फैला दिया था, बखेर दिया, आबाद कर दिया, इस बादशाह ने इस वाकये के 70 साल के बाद उनको दोबारा बुलाया, आओ अपने शहर में आबाद हो। वो लोग भी आए और उनके साथ नए लोग भी आए, एक नई जगह चलो हम चल के देख। और आप जानते हैं इंसान जहां पहुंचता है जरूरियात जिंदगी वहीं पहुंच जाती। अब एक इंसान जहां रहेगा उसको खाने की जरूरत है, उसको पीने की जरूरत है, उसको लिबास की जरूरत है, उसे मकान की जरूरत है, तो जहां रहेगा मकान बनाएगा ना, खाने पीने का इंतजाम करेगा। एक आबाद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, खानदान आते रहे, पूरा शहर आबाद हो। और जो जो इमारतें गिरी हुई थीं, जिनकी छतें ढह गई थीं, दीवारें ढह गई थीं, बिल्कुल मिसमार कर दिया गया था, उन्होंने दोबारा से तामीर शुरू कर दी। एक मकान बना, दूसरा बना, तीसरा बना, बकिया 30 साल के अरसे में पूरा बैतुल मुकद्दस दोबारा आबाद हो गया। इनके सोने के 70 साल के बाद लोग आए ना, बकिया 30 साल कितने हो गए पूरे, 100 साल। अब ये 100 साल के बाद जब बेदार हुए और इनकी जबान से क्या निकला था, अन्ना योही हादिहिल्लाहु बाद मौतिहा, अल्लाह तबारक व ताला कैसे जिंदा करेगा इसको दोबारा, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये शहर कैसे आबाद होगा। वही अल्लाह तबारक व ताला इन्हें दिखाना चाहता, देखो इस तरह हम करेंगे। अच्छा पहले एक निशानी दिखा दी, उस गधे को इनके आंखों के सामने गोश्तपोश पहनाकर दोबारा से जिंदा करके दिखा दिया। अब इन्होंने क्या किया, गधे पे सवार हुए, वो जो अपना खाना पीना जो था जो दरख्त के साथ बांध दिया था लटका दिया था वो निकाला, दोबारा सवार हुए, अब फिर चक्कर लगाया बैतुल मुकद्दस। अब जब चक्कर लगाते हैं 100 साल के बाद तो नक्शा ही बदला हुआ, वो जो दीवारें गिरी हुई थी मकानों पर उनकी छतें गिरी हुई थी मिसमार हो गया था, अरे मकान तो दोबारा तैयार, बाजारों में वही चहल पहल, 30 साल में शहर दोबारा आबाद, लोग आकर दूर दूर से बैतुल मुकद्दस में बसने लगे, बड़े खुश हुए हैरान भी हुए, ये क्या हुआ, मैंने तो देखा था ये शहर बिल्कुल तबाह हो गया, ये तो दोबारा आबाद हो गया। फिर इनको ख्याल हुआ कि मैं अपने घर जाकर देखूं, अपने मोहल्ले में, उसी याददाश्त पर वहां पहुंचे तो अपने घर पहुंच गए, लेकिन अंदाज बदला हुआ था, जाहिर है 100 साल में जब दोबारा तामीर होगा तो कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन ये उसी जगह पहुंच गए जहां इनका घर था। इन्होंने देखा कि घर के आगे एक बूढ़ी औरत बिल्कुल नहीफ नातवा कमजोर वो बैठी हुई, और उसकी बीनाई भी जाइल हो चुकी नाबीना। हजरत उजैर अलैहि सलाम ने जाकर सलाम किया, उसने जवाब दिया, आपने फरमाया बड़ी भी उजैर को जानती हो, हां जानती हूं, वो हमारे नबी हजरत उजैर अलैहि सलाम, लेकिन उनको तो गए हुए अरसा हो गए, उनका तो कोई अता पता नहीं, पता नहीं कितने साल गुजर गए, 100 साल भी गुजर गए, कोई पता नहीं। फरमाया मैं उजैर हूं, उसने कहा नहीं नहीं हो सकता, अरे 100 साल में पता नहीं लगा, आप कह रहे मैं उजैर हूं, ये कैसे हो सकता है, कहां मैं उजैर हूं, नहीं मैं नहीं मानती आप उजैर, अरे मैं कह रहा हूं कि मैं उजैर हूं, उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ना तो एक निशानी, हमारे नबी हजरत उजैर अलैहि सलाम की एक निशानी, और वो ये है निशानी, ये निशानी थी कि वो मुस्तजाबुद दावात थे, मुस्तजाबुद दावात के माना जिसके लिए दुआ करते थे उसी वक्त कबूल हो जाते, ये उनकी निशानी थी। अगर आप कहते मैं उजैर हूं, आप अभी दुआ कीजिए मेरे लिए कि मेरे जिस्म पे जो फालिज है मैं माजूर हो गई हूं, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, और मेरी बिनाई जो जाइल हो चुकी है ये दोबारा से वापस आ जाए। फरमाया ठीक है हम दुआ करते हैं। हजरत उजैर अलैहि सलाम ने रहमतों बरकतों वाले हाथ उठाए, मौला इस बूढ़ी को बिनाई दे दे, इसके जिस्म को सही कर दे, अभी आपने दस्ते मुबारक चेहरे अनवर पर फेरे भी नहीं थे कि वो दुरुस्त हो गए, उसका वो फारिज दूर हो गया, सेहतमंद, और बिनाई जो जाहिल हुई थी वापस आ गई, देखने लगी, जब देखा हां वाकई आप ही उजैर, उस वक्त तो नजर नहीं आ रहा था ना, अब एक तो देखा दूसरे मौजजा भी देखा, दुआ की कबूलियत का असर भी देखा, दोनों चीजें हो गई ना, आंख से भी देख लिया और हकीकत में खुद सही हो गई, बिनाई वापस आ गई, अब तो इनकार की गुंजाइश नहीं, हां ठीक है मैं मान गई आप उजैर हैं, ये आपका घर है, आपने पूछा ये हमारा ही घर है, जी हां ये आपका ही घर है, चलो फिर कौम के पास चलें। पूरी कौम में यही था कि वो अरसे दराज से लापता हो गए, कोई खैर खबर नहीं, अब ये बूढ़ी औरत उनको लेकर आई, एक मकाम पर देखा कि कुछ लोग बैठे, उनमें हजरत उजैर अलैहि सलाम के पोते भी थे, वो भी बूढ़े हो चुके थे, बड़े होकर बूढ़े हो गए, इन्होंने कहा लोगों सुनो देखो ये हमारे नबी हजरत उजैर अलैहि सलाम आ गए, उन्होंने गौर से देखा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अरे मैं कह रही हूं ये वही है, कहा उनको तो अरसा हो गया, कितने साल गुजर गए कोई खैर खबर नहीं, आप कैसे करेंगे, उसने कहा देखो मैं सही हो गई, अपना बताया मुझे सेहत मिल गई, मेरी बिनाई वापस आ गई, मुझसे जाबो दावत, उन्होंने कहा अच्छा एक निशानी उनकी है, एक तो इसने बताई थी ना, उन्होंने कहा एक और हम बताते हैं, वो निशानी अगर पूरी हो जाए तब हम माने कि यही उज़ैर अलैहिस्सलाम। वो क्या है? उनको तौरात शरीफ जो है वो जबानी याद थी। अगर ये हमें सुना दे हम मान लेंगे। आपने फरमाया ठीक है सुनो। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, अज अव्वल ताखिर पूरी तौरात जबानी सुना दी। लेकिन फिर एक मसला हुआ, मसला ये हुआ कि तौरात इनको तो याद थी, जो सुन रहे थे उनको याद नहीं थी। अब ये प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने कहा आपने तो सुना दी, लेकिन मसला ये है कि हमें तो याद नहीं, अब हमें पता नहीं आपने क्या सुना दिया भाई। इसी दबान में कोई किसी किताब की इबारत सुना दी, कोई और किताब सुना दी, हमें क्या पता। अब ये कैसे कंफर्म हो कि जो इबारतें आपने पढ़ी हैं, जो पूरी किताब आपने हमें सुनाई है, ये तौरात की ही इबारतें हैं? फिर मसला हो गया। फरमाए भाई मैं कह रहा हूं कि तौरात की इबारत नहीं, हम कैसे माने। अल्लाह तबारक व तआला की शान, उसकी कुदरत, जब वो किसी चीज को जाहिर फरमाना चाहता है और अपनी कुदरत की निशानियां दिखाना चाहता है तो उसके जराए पैदा फरमा देता है। तो जब ये बहस मुबाहसा होता रहा कि भाई इन्होंने सुना तो दी लेकिन हमें तो तौरात याद नहीं, इन्होंने पता नहीं क्या सुना दिया। अब जैसे कोई हाफिज कुरान पढ़ रहा हो और वो कहे कि जी मैं हाफिज हूं, आप सब मेरे पीछे तरावी पढ़ें। उसने पढ़ना शुरू कर दिया, पीछे कोई हाफिज नहीं, उनको क्या पता कि ये कौन सा पारा पढ़ रहा, या इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, कुछ नहीं पता। मसला है ना। अब क्या करें? जो जानता हो, जिसको याद हो, वही तो बताएगा। इसीलिए सामे की जरूरत होती है। अगर हाफिज कोई गलती करे सामे फौरन लुकमा दे दे, आपने गलत पढ़ा, उसी वक्त बता दे। और ना हो तो वो तो फिर अल्लाह तवक्कली चलता रहेगा, इधर से बोलेगा तो उधर पहुंच जाएगा, उधर से बोलेगा तो इधर पहुंच। अक्सर उफाज भी सेटिंग कर लेते हैं अपने सामे के साथ, ये सिपारा मुझे याद नहीं है, जरा हल्का हाथ रखना वरना लोगों में बेइज्जती हो जाएगी, खामोश रहना, मैं खुद ही निकाल लूंगा, इधर उधर करके पूरा कर लेंगे, 20 रकात पूरी हो जाएगी। अक्सर ऐसा हो जाता है, इल्ला माशाल्लाह। सारे हुफाज ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं हाफिज सारे नाराज हो जाए। खैर बहरहाल, अब मसला वही था। अल्लाह तबारक व ताला ने एक जरिया पैदा फरमाया। उन्हीं में से एक आदमी ने कहा एक बात है, अगर वो पूरी हो जाए तो ये मसला हल हो सकता है। उन्होंने कहा वो क्या है? कहा मेरे दादा ने उस वक्त जब तौरात के नुस्खे बुख्ते नुसर्रा ने जलवा दिए थे, क्योंकि वो ऐसा जालिम बादशाह था कि तौरात शरीफ के नुस्खे उसने जला दिए, बाकी समंदर में फेंक दिए, दरियाओं में डाल दिए कि बिल्कुल ये खत्म हो जाए, मकानात को, बाजारों को, सबको मिसमार कर दिया, इंसानों को कत्ल कर दिया, बैतुल मुकद्दस को वीरान कर दिया। तो उसने कहा उस वक्त मेरे दादा ने एक नुस्खा तौरात का कहीं से छुपाकर और उसको बचाकर एक जगह जमीन में दफन कर दिया। अब अगर वो जगह मुझे याद है, क्योंकि मुझे अपने जहन पे कुछ शक है कि पता नहीं वही जगह है या नहीं, मैं उधर जाता हूं, तुम लोग मेरे साथ चलो, हम वहां खोते, अगर वो नुस्खा निकल आया फिर इनसे कहेंगे आप सुनाइए, हम वो लेकर बैठ जाएंगे, फिर तो तस्दीक हो जाएगी कि जो ये पढ़ रहे हैं वही है और जो इसके अंदर है वो वही है जो ये इन्होंने पढ़ा है, फिर बात ऑथेंटिक हो जाएगी। लोगों ने कहा चलो। अब ये बताइए कि 100 साल में किताब जमीन के अंदर महफूज रह सकती? खत्म हो जाएगी। जमीन तो खा जाती है, जमीन इंसान को खा जाए तो किताब, किताब की क्या हैसियत है? वो तो कागज है, खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला जब अपनी शान दिखाना चाहता है 100 साल के अंदर भी वो चीज महफूज रहती। ये सब के सब गए, उसने अपनी याददाश्त पे बहुत जोर दिया, हां मेरे ख्याल से इसी जगह है, यहां से खोदो, और जब खोदा वहीं से तौरात का पूरा नुस्खा बिल्कुल सही सलामत निकला है। उन्होंने कहा चलो भाई हो गया काम, अब वो नुस्खे को लेकर आकर बैठे। कहा अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ना शुरू किया, ये मिलाते रहे वो पढ़ते रहे, ये मिलाते रहे वो पढ़ते रहे। जब इबारत खत्म हुई, किताब मुकम्मल हुई, एक लफ्ज इधर से उधर नहीं था, एक लफ्ज इधर से उधर। फिर उन्होंने यकीन कर लिया कि हां वाकई ये उजैर अलैहिस्सलाम। फिर आप अपनी कौम में रहे, तबलीग करते रहे, रुजतो हिदायत फैलाते रहे, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाते रहे। ये तो वाकया मुकम्मल हो गया। अब इस वाकये में हमारे लिए क्या सबक मौजूद है और खालिक कायनात इस वाकये के जरिए हमें क्या बताना चाहता है, इसको समझिए। वाकया तो आपने सुन लिया ना, सुन लिया या नहीं, समझ लिया या नहीं? आइंदा नशीस में पूछूंगा तो पूरा गायब ही होगा सारा। अब वाकया याद रहे या ना रहे, वैसे तो याद रहना चाहिए। इसमें एक बात और है, आप जो कुछ सुने वो अपने घर जाकर भी सुनाइए, ये भी एक तबलीग का जरिया है। अपने बीवी बच्चों को बिठाकर, छोटे बच्चों को शौक होता है ना सुनने का, तो उनको इधर उधर की कहानियां सुनाने के बजाय कुरान के सच्चे वाकया सुनाइए। अभी से उनके जहन में ये सच्चे वाकयात जाएंगे, जब बड़े होंगे उनका जहन पुख्ता होगा और कुरान पर ईमान कवि हो, तो खुद भी याद रखिए आगे भी पहुंचाइए। तो वाकया तो सुन लिया, अब इसमें क्या नुकात हैं? पहली चीज, अन्ना योही हाथी हिल्ला बाद मौतिहा। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई जुमला हमारी जबान से निकलता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये हमारे लिए है, खालिक कायनात के लिए नहीं। वो कहते, तुम कहते हो कैसे होगा, हम दिखाते हैं ऐसे होगा, हम दिखाते हैं ऐसे होगा। उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, हमारे लिए नामुमकिन है। हम कहते कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, आबाद होगा, खालिक कायनात ने फिर आबाद करके दिखा दिया। दूसरी बात, हमारा अकीदा यह है अहले सुन्नत व जमात का, जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं सब अपनी कबूर में जिंदा हैं, जितने बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन हैं सब जिंदा हैं, शोहदा जिंदा हैं, सालेहीन जिंदा हैं, कामिलीन जिंदा हैं, वासिलीन जिंदा हैं, सब जिंदा हैं। अब जो मोतरिज है वो कहते नहीं ये कैसे तुमने कह दिया, वो तो मानते नहीं ना, नहीं ये कैसे हो सकता है भाई, आप कब्रस्तान जाएं आप देखें, कब्रें खुली पड़ी हुई हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं, और मुशाहिदा भी यही है कि जब एक इंसान को दफन किया जाता है 3 दिन के बाद उसका पेट फट जाता, कीड़े पैदा होते हैं, 40 दिन में ये गोश्त पोश सब खत्म हो जाता, खोपड़ी की हड्डी बाकी रह जाती या रीढ़ की हड्डी रह जाती या चंद हड्डियां, सब खत्म। 40 दिन के बाद खोलकर देखो तो हड्डियां मिलेंगी, कुछ नहीं। इसीलिए हुक्म है कि अपने मरहूमीन के मजारात पर जाओ, तुम उनकी कब्रों की जियारत करोगे अपनी कब्र याद आएगी। आज मैं इसकी कब्र पर आया हूं, कल कोई मेरी कब्र पर भी आएगा। और दूसरी हिकमत क्या है, हिकमत यह है जब जाते रहोगे सरकार के फरमान की, हिकमत यह है हर हदीस शरीफ जितनी भी अहादीस हैं आप देख लें कोई ना कोई हिकमत उसमें मौजूद। फरमाया नहीं तो कुमान ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरुहा, मैं तुम्हें कब्रों की जियारत से मना करता था, अब हुक्म देता हूं जियारत करो। सरकार ने हुक्म दिया, खुद भी जियारत की, सहाबा ने भी की, उम्मत को भी गुनाहगारों को हुक्म दिया तुम भी जियारत करो। इसमें क्या हिकमत थी, आज के दौर में हिकमत मजीद वाजे हो रही, जैसे जैसे दौर गुजरता जाएगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिकमतें मसलहतें मजीद उजागर होती रहीं। आज क्या कैफियत है, जो लोग अपने मरहूमीन के मजारात पर नहीं जाते, कब्रों पर नहीं जाते, गोरकर ने देखा अच्छा इस कब्र पर कोई नहीं आया, उसने अपने जहन में रख लिया या कोई निशानी लगा दी, 40 दिन गुजरे नहीं आया, 1 साल गुजरे नहीं आया, उसने शबे बारात में तो आएगा ही बेचारा, कोई सुन्नी होगा तो चला ही जाएगा और दूसरा होगा तो जाएगा ही नहीं। उसने कहा अच्छा नहीं आया, ठीक है 1 साल गुजर गया, बारिशों का मौसम आया, उसने सुराख कर दिया, पानी सारा कब्र के अंदर, बैठ गई कब्र। सफाई करने के बहाने उसने खोदा निकाला, देखा हड्डियां हैं, हड्डियां निकाल के दूसरी कब्र में, ये कब्र फिर नए मुर्दे के लिए तैयार। यही हो रहा, हो रहा है या नहीं हो रहा? कराची के कितने कब्रस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए, लेकिन आमद जारी है, लोग आ रहे हैं, दफन हो रहे हैं, मुर्दे आ रहे हैं दफन। कैसे दफन हो रहे हैं? जब बंद हो गए, बंद होने का मतलब है कि अब जगह नहीं है। गोरकन से पूछो कि आइए, बहुत सी जगह आपके लिए भी है, अब तो इसको लाए आपके लिए भी जगह, वो बना देगा पहले से। अब क्या होगा अगर जाते रहेंगे? हमने देखा कि किसी अजीज रिश्तेदार की कब्र धस रही है, उसको सही करा दी, फातिहा पढ़ ली, फूल चढ़ा दिए, इशारे सवाब कर दिया, वहां जाकर सफाई कर दी। उसने देखा अच्छा इस कब्र पे ये आ रहा, अगर ये आठवें दिन नहीं आता तो महीने पे आता है, महीने पे नहीं आता तो सालाना शबे बरात पे आता है, आता तो है, उसको नहीं छेड़ेगा। इसीलिए मेरे ख्याल से, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, जितनी कब्रें महफूज हैं वो सुन्नियों की होंगी और किसी की नहीं होंगी, इसीलिए कि यही जाते हैं, वो तो जाते ही नहीं है, वो तो एक दफा गए उसके बाद गए नहीं, जब ही जाएंगे तब लोग उनको लेके जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात जाते हैं। सरकार ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्रा अबवैहि औ इहदाहुमा फी यौमिल जुमा, जिसने अपने वालदैन की दोनों की या एक की कब्र की ज़ियारत की जुमे के दिन, कुतिबा लहू बिर्रन गुफिरा लहू, अल्लाह के नजदीक वो नेक लिखा गया और उसकी मगफिरत कर दी। यानी वालदैन की कब्रों की ज़ियारत करना जुमे के दिन, दोनों की या एक की, सिर्फ आप जुमे के दिन ज़ियारत कर लें, मगफिरत हो गई, कितनी बड़ी बात है। और उसमें वालदैन का जिक्र है, जब वालदैन की कब्र की ज़ियारत करने से मगफिरत हो जाए तो जो औलिया अल्लाह हैं उनकी कब्र की ज़ियारत करने से मगफिरत नहीं है। इसीलिए तो हम ज़ियारतें कर रहे हैं, मौला हम गुनाहगार हैं इस वली के मजार पे आए, इसी वजह से मगफिरत हो जाए। तो जब हम उनसे ये कहते हैं कि भाई ये औलिया किराम जिंदा है, ये बुजुर्गान दीन जिंदा हैं, तो वो कहते हैं कैसे? एक आदमी को दफन कर दिया जाए, 40 दिन के बाद देखो हड्डियों के सिवा कोई चीज नहीं, और कोई ज्यादा दिन रहे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, खत्म। अरे जिनके विसाल को 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, 100 साल हो गए, कैसे बाकी रहेंगे? एक ही फिजा है, ये कैसे हो सकता है कि एक कब्र में एक मुर्दा 40 दिन में खत्म हो जाए और उसी के बराबर या उसके करीब या उसी कब्रस्तान में दूसरा मुर्दा जो है 100 साल महफूज रहे? ये कैसे मुमकिन है? माहौल तो एक ही है ना, फिजा एक ही है, हवा एक ही है। हमने कहा यही तो कमाल है, यही कमाल है और यही खालिक़े कायनात की शान है और इसी पर हमारा ईमान है और यही वली की पहचान है, यही वली की पहचान है कि उसी फिजा में एक लाश गलकर सड़कर खत्म हो गई, सिर्फ हड्डियां रह गई, उसी हवा में उसी फिजा में उसी कब्रस्तान में अल्लाह का वली 100 साल के बाद भी अपनी कब्र में मौजूद। वो कहते नहीं ये कैसे हो सकता है? हमने कहा कुरान उठाकर देखो, कुरान, इसीलिए कि कुरान का इनकार करोगे काफिर हो जाओ, हम इसीलिए कुरान पेश कर रहे हैं। हजरत उजैर अलैह सलाम जमीन पर लेटकर सोए, जमीन में नहीं सोए, जिंदा थे ना, कब्र में तो नहीं थे, जमीन पे लेट के सो गए। और कितने साल सोए? 100 साल। कुरान ने कहा बल लबिस्त मियत आमिन, बल्कि आप 100 साल यहां ठहरे, 100 साल सोए। अच्छा एक आदमी जंगल में लेट जाए तो जंगल में क्या है? हशरातुल अर्ज, रींगने वाले जानवर, सांप, बिच्छू, खनखजूरे, लाल बेग और कितनी किस्म की चीजें सब जंगल में है ना। एक आदमी लेट जाए क्या वो उसको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे? अच्छा ये तो हशरातुल अर्ध हैं जो रींगने वाले जानवर, सांप बिच्छू वगैरह, इसके अलावा दरिंदे, शेर चीते जो इंसान को चीर फाड़ दें वो नहीं हमला करेंगे, वो भी हमला करेंगे। ऊपर से परिंदे वो भी हमला करेंगे, हशरातुल अर्ज वो भी हमला करेंगे। और अगर ये सब कोई हमला ना करें तो 100 साल में कितनी आंधियां चली होंगी, कितनी बारिशें हुई होंगी, मौसम में कितने तगय्युर और तबद्दुल आए होंगे। भाई गर्मी पड़ी होगी ना, कोई छत तो है नहीं, धूप डायरेक्ट पड़ रही है जिस्म पर, सर्दी डायरेक्ट जिस्म पर असर। यह भी नहीं कि कोई लिहाफ कंबल वगैरह ओढ़कर या छत के नीचे या मकान के अंदर खुली फिजा में, जमीन है ऊपर आसमान है, जमीन पर अल्लाह का नबी सो रहा, 100 साल में हवाएं चलती रहीं, आंधियां आती रहीं, तूफान आए होंगे, सर्दी हुई होगी, गर्मी हुई होगी, बारिशें हुई होंगी। खालिक कायनात ने यकीनन कह दिया होगा सूरज की रोशनी को, मेरा महबूब बंदा सो रहा है, इसे अज़ियत नहीं पहुंचानी। हवाओं को हुक्म दे दिया गया होगा मेरा नबी सो रहा है, इस पर खाक नहीं डालनी। हवा से खाक नहीं आएगी, मट्टी नहीं आएगी, धूल आएगी नहीं। ना हवाओं ने नुकसान पहुंचाया, ना फिजाओं ने नुकसान पहुंचाया, ना चरिंद परिंद दरिंद दरिंदे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। 100 साल में अल्लाह का नबी बिल्कुल महफूज रहा, ऐसे ही सोकर उठे जैसे अभी सोए थे। अच्छा, उसी फिजा में गधा मर गया, गधा मर गया, उसका गोश्त खत्म हो गया, उसकी हड्डियां बाकी रह गई। खालिक कायनात ने बता दिया, देखो तुम्हारा ये एतराज कि एक ही कब्रस्तान में ये कैसे हो सकता है, एक ही जमीन पर या एक ही जमीन में दफन किया गया, ये कैसे हो सकता है, एक मुर्दा मौजूद है दूसरा खत्म हो गया। बिल्कुल हो सकता है, जमीन पर हो सकता है तो जमीन में क्यों नहीं हो सकता, जमीन पर जब हो सकता है तो जमीन में क्यों नहीं हो सकता। उसी हवा में उसी फिजा में गधा मर गया, गल गया, सड़ गया, और उसी हवा में उसी फिजा में उसी जमीन पर उसी माहौल में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे और जिस्म मुबारक में कोई तगय्युर तबद्दुल बिल्कुल नहीं, यहां तक के उनके बाल मुबारक भी सफेद नहीं हुए। 100 साल में सफेद तो होने थे ना, ऐसा लगता था जिस उम्र में सोए उसी उम्र में उठे। ये अल्लाह की शान, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। तो यहीं से अहले सुन्नत का अकीदा साबित हो गया कि अल्लाह का नबी जिंदा होता है जमीन पर हो या जमीन में हो। जो खुदा अपने नबी को जमीन पर इन तमाम चीजों से महफूज रख सकता है तो क्या जमीन में महफूज नहीं रख सकता, जमीन में महफूज नहीं रख सकता, ये उसकी शान है उसकी कुदरत। तो ये कहना कि कैसे होगा, कैसे जिंदा रहेंगे, ये तो बिल्कुल एक कम अकली की बात। कुरान अगर उठाकर देख ले, अच्छा असाबे कहफ कितने साल सोए, 100 साल सोए, अल्लाह ने उनके अजसाम को महफूज रखा या नहीं रखा, बल्कि वो तो वो उनका कुत्ता भी महफूज है। अहलुल्लाह के साथ निस्बत रख ली, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दी, कल्ब हम बासितुन जरा ही बिल वसीद, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर पैर फैलाए हुए सो रहा। जब कुत्ता जैसी जलील हकीर चीज अहलुल्लाह से निस्बत रख ले, अल्लाह कुरान में जिक्र कर दे, तो हम गुनाहगार अगर निस्बत रख लें तो हमारा क्या मकाम। ये तो नेक लोगों की बात है। एक बुजुर्ग बैठे थे, एक संतरे बेचने वाला बाहर से गुजर रहा था, उसने आवाज लगाई, अच्छे संतरे। क्या कहा? अच्छे संतरे। संतरे कहते ना ये किन्नू वगैरह जो होते ना, उसको कहते संतरा। तो वो अपनी एक टोकरी थी कंधे पे रखा हुआ बाजार से गुजर रहा, एक बुजुर्ग घर में बैठे थे, बाहर से आवाज लगा, जैसे लोगों की आदत होती, कोई फल बेचने वाला है तो आवाज लगाते, जी मीठे आम है ले लो, कोई केले बेचने वाला है, कोई और चीज बेचने वाला, आवाज लगाते ना। कि जो घर में बैठा है उसे तो पता नहीं क्या है, वो बाहर निकल के देखे तो उसने आवाज लगाई अच्छे संग तरे, बुजुर्ग ने अल्लाह की जरब लगाई, बेहोश हो गए। लोगों ने कहा क्या हो गया, कहा इस आवाज ने मुझे बेहोश कर दिया। जब होश में आए कहा बड़ी सच्ची बात कह रहा, कौन से थे? उसने कहा अच्छे संगतरे। कहा इसमें क्या बात है भाई, संगतरे तो किन्नू वगैरह को कहते हैं, इसने कहा कि अच्छे संगतरे, यानी मेरे पास अच्छे किन्नू वगैरह आके ले लो। उनका नहीं, इसके कहने का मतलब ये था अच्छों के संग हो जाओ तर हो जाओगे, अच्छों के संग हो जाओ तर हो जाओगे, ये मकसद था। अच्छे संग तरे, जो अच्छों के संग रहता है वो तर ही तर रहता है। ये है बुजुर्गों की शान, एक एक लफ्ज में उन पर कैफियत तारी हो जाती, जल्द की कैफियत तारी हो गई, बेहोश हो गई। अच्छे संग तर, तो जो इनके साथ लग जाए वो भी तर हो जाए, उसका भी बेड़ा पार हो जाए। ये तो उनकी शान है, उसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपना महबूब बनाता है, अपना मुकर्रब बनाता है, तो जो जो भी उसके करीब होता है सबको महबूब बना लेता है। महबूब का महबूब महबूब, और महबूब का दुश्मन दुश्मन। तो जब किसी को अपना वली बना लिया, अब जो वली की बारगाह में आ गया, वली के सदके में वो भी महफूज। मसलन एक बुजुर्ग थे, उनका एक विर था, या हय्यो या कय्यूम, अल्लाह तबारक तआला का नाम है ना, पढ़ने के लिए वजीफा बताया जाता, लोग पढ़ते हैं इसके फवायद हासिल होते हैं, अल्लाह तबारक तआला की नजर करम होती। उनकी जबान में लुकनत थी, होता है ना अक्सर, तो वो पढ़ते थे या हय्यो या तय्यूम, यानी कय्यूम के बजाय तय्यूम, जबान की लुकनत, जानबूझ के नहीं करते थे, एक मजबूरी कह लें, एक आरजा कह लें। लेकिन इसके आमिल थे, इतना पढ़ा कि वो वजीफा उनके अमल में आ गया, और ऐसा अमल में आया कि ये वजीफा पढ़ते पढ़ते जैसे खुश्की पे चलते थे ऐसे समंदर पे भी चले। ये अल्लाह ने उनकी जात में वस्त पैदा कर। अब एक मुरीद जो था उसने देखा ये हजरत रोजाना कहीं जाते हैं, शाम होती तो वो निकल जाते, इन्होंने कहा इनका पीछा करना चाहिए, कहां जा रहे हैं कुछ बताते नहीं है, एकदम उठ के चले जाते हैं, सुबह देखो तो फिर मौजूद, लेकिन ये नहीं पता कि जाते कहां। देखा कि हजरत पढ़ रहे हैं या हय्यो या तय्यूम, या हय्यो या तय्यूम पढ़ रहे हैं, इसने भी पढ़ना शुरू कर दिया, पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया, और ये सोचा कि इनको तो पता ही नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है कि इंसान कहता है पीर को तो पता ही नहीं है कुछ भी कर, पीछे पीछे ये नहीं पता जैसे आगे देखेगा ऐसे पीछे भी देखेगा। ये तो नबी की शान है ना, सरकार ने फरमाया था ना सहाबा से, अपने रुकू और सुजूद को दुरुस्त कर लो, खुदा की कसम मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देख। तो उनके कदमों के सदके में वली भी जैसे आगे देखता है पीछे भी देखता। अब ये चलना शुरू हो गए, हजरत आगे आगे ये पीछे पीछे, वो बुलंद आवाज से पढ़ना या हय्यो या तय्यूम, ये भी इसने भी उसी तरह पढ़ना शुरू कर दिया, कय्यूम के बजाय तय्यूम कहना शुरू कर दी। जब ये चलते चलते समंदर पे पहुंचे, अब वो तो चलना शुरू हो गए, अब ये डरा, कदम रखा तो ऐसे नहीं अंदर ही, इसने कहा हजरत मैं भी आ रहा हूं, उन्होंने कहा पढ़ या हय्यो या तय्यूम, इसने पढ़ा ये भी चलना शुरू हो, समंदर पे वो आगे जा रहा है ये पीछे जा रहा। जब बिल्कुल दरमियान में पहुंचे तो इसको ख्याल आया कि हजरत की जबान में तो लुकनत है, मेरी जबान तो सही है, ये तो तय्यूम पढ़ना है, मुझे कय्यूम पढ़ना चाहिए। इसने जैसे ही सही पढ़ा वहीं समंदर में डुबकी खाई, फिर चीखा हजरत, फरमाया वही पढ़ जो हम पढ़ रहे हैं या हय्यो या तय्यूम, फिर पढ़ा फिर चलना शुरू हो। कहने का मकसद ये है कि उनकी यही अदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल थी, ये सही पढ़ रहा है तो डुबकी खा रहा है, वो जबान की वजह से दूसरे कैफियत में पढ़ रहे हैं वही कबूल है, अल्लाह की शान। क्यों? उनकी नियत में खुलूस था, खुलूस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ने वही कबूल कर। تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے، تو جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے ولیوں کے قریب کر دیتا، اپنے نیک بندوں کے قریب کر دیتا، اپنے نبیوں کے قریب کر دیتا، مقربین کے قریب کر دیتا. جو ان کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو ان سے دور ہیں وہ اللہ سے دور ہے. تو خالق کائنات نے 100 سال زمین پر محفوظ رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو جب زمین پر ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں تو زمین میں کیوں نہیں رکھ سکتے، اس کی قدرت ہے. اور جب بندہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کا جہاد کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو خالق کائنات اسے اس عبادت، ریاضت، مجاہدہ، ان تمام چیزوں کا نتیجہ، صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی. عالم برزخ میں جیسے وہ دفن کیا گیا، قیامت میں اسی کفن اور اسی جسم کے ساتھ اٹھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جس طرح اس زمین پر، اس دنیا میں تمام لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز ایک نہیں ہے. کوئی آدمی ہے جو ایک کمرے کے مکان میں زندگی گزار رہا، آپ دیکھ لیں مشاہدے میں، ایک غریب ہے صرف ایک کمرہ ہے اس کے پاس، اس میں زندگی گزار رہا، اور کسی کا واش روم اتنا بڑا ہے جتنا غریب کا پورا گھر ہے، نا ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا واش روم کہ غریب بیچارہ پورا گھر اس کے اندر بنا لے، اور امیروں کا واش روم ہی اتنا الگ. اسٹیٹس آف لائف مختلف ہے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس رکھنے کو نہیں، کوئی دو روٹی کو ترس رہا ہے، اور کسی کے پاس رکھنے کے لیے پیسہ اتنا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں میرے پاس کتنا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا ایک دورے کے دوران، ایک صاحب نے 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے کسی کو دیا اور کہا کہ میرا یہ کام کرا دینا. اب جب کروڑ روپیہ دیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کون ہوگا، اور جس کام کے لیے دیا ہوگا وہ کام بھی پتا ہوگا کہ کیسا ہوگا. خیر، پردہ پوشی کرنی چاہیے. اور اس کے بعد وہ بھول گئے کئی مہینے کے بعد، بلکہ 6 مہینے کے بعد جن کو دیا تھا انہوں نے کہا جناب وہ جو آپ نے دیا تھا، کیا دیا تھا میں نے تمہیں؟ اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے 1 کروڑ روپے اسے دیا تھا. یہ غور کریں بھائی، 1 کروڑ روپے آپ نے مجھے دیا تھا فلاں کام، اچھا وہ تمہارے پاس ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک چلو صحیح. غور کرو جو 1 کروڑ روپیہ دے کر بھول جائے اس کے پاس کتنے اربوں روپیہ ہو. میں نے کہا تو ایسے بھول گیا جیسے 10-20 روپے دے کر بھول گیا، جیسے 400-500 روپے دے کے بھول جائے آدمی. 1 کروڑ روپے دولت کا توازن نہیں، غریب بالکل غریب ہے، امیر بالکل امیر. کہنے کا مقصد یہ کہ اس دنیا میں جس طرح رہنے کا انداز ایک نہیں ہے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی ایک نہیں ہے. کئی عالم ہے نا، عالم اربع، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. پہلے ہم سب عالم اربع میں تھے، ہماری روحیں جو تھیں عالم اربع میں، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد عالم دنیا میں، اس کے بعد قبر کے پیٹ میں عالم برزخ، اور اس کے بعد عالم آخرت. یہ سارے عالم ہیں اور ان سب عالموں سے گزرنا ہے. تو ہم تو سفر ہی کر رہے ہیں، سفر میں ہی ہے نا. عالم اربع میں تھے، وہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے یہاں آ گئے، یہاں سے قبر میں، وہاں سے آخرت. رکیں گے کہاں کہاں رکیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں، وہیں سفر ختم ہوگا نا، ورنہ سفر چل ہی رہا ہے. ہم تو سب مسافر ہیں، یہاں بھی چند دن کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 20 دن کے لیے، کوئی 50 دن کے لیے، کوئی 60، کوئی 70، پھر روانگی. چلو کہاں چلیں؟ خبر نہیں. جب تک اللہ چاہے گا وہاں رہیں گے، پھر کہیں گے اٹھ جاؤ. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، صاحب باہر چلو، یوم حساب، یوم آخرت، یوم قیامت. اور جب حساب و کتاب ہو جائے گا، سرکار کے جھنڈے تلے چلو سب جنت. تو یہ تو سفر ہی سفر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی سب مردے ایک طرح نہیں ہیں. جس طرح اس دنیا میں ایک طرح نہیں ہیں، اس طرح وہاں بھی ایک طرح نہیں. कोई वो है कि जिसका गोश्त पोश खत्म हो गया, हड्डियां रह गई, पीछे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं, कोई साले सवाब करने वाला भी नहीं, और वो जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए गुजारी, रियाजत और मुजाहिदे में गुजारी, उसके लिए साल पे क्या, महीने पे क्या, रोजाना ही साले सवाब के तोहफे पहुंच रहे, रोजाना पहुंच रहे हैं, उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मकामात बुलंद हो रहे हैं। और जिस जिस्म के साथ, जिस कफन के साथ उनको दफन किया गया, कयामत में उसी जिस्म और उसी कफन के साथ उठेंगे। और ये ऐसा नहीं कि मैंने जोश में आकर कह दिया, कितने वाकयात ऐसे गुजर चुके हैं बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के, कि जिनको किसी को 1.5 साल के बाद, किसी को 150 साल के बाद, किसी को 100 साल के बाद कब्र से निकाला गया, बिल्कुल ऐसा कि जैसे आज ही दफन किया। ये तो सरकार के गुलामों की शान, ये शान है खिदमतगारों की, तो आका का आलम क्या होगा। जब गुलामों की ये शान है तो फिर शहनशाह की क्या कैफियत है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, वो जिसे चाहे महफूज रखे और जिसे चाहे खत्म कर। तो जो वफादार है वो कब्र में भी जिंदा है, जो गद्दार है वो जमीन पर चल रहा है वहां भी मुर्दा है। ये तो कुरान हमें बता रहा, कुरान ने हमें बताया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुर्दों को कलामे रब्बानी नहीं सुना सकते। कौन मुर्दे? काफिर। सरकार द्वारा अलैहि सल्लतु वसलाम ने को फरमाया, ए महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। अरे ये मुर्दा कैसे, ये तो बाजार में चल रहा। काफिर जो बाजार में चल रहा है, कुरान ने कहा मुर्दा है, वो गुफ्तगू कर रहा है, कुरान कहता है मुर्दा है, वो खरीदो फरोख कर रहा है, कुरान कहता है मुर्दा है। अकल इंसानी हैरान है, हम तो जिसको चलता फिरता देखें उसको जिंदा कहेंगे, जिसको गुफ्तगू करता हुआ देखें उसे जिंदा कहेंगे, जिसे खरीदो फरोख सलामो कलाम करते हुए देखें उसे जिंदा कहेंगे। कुरान ने कहा नहीं मुर्दा है। और वो जो मैदान कारजार में गया और अपनी जान अल्लाह के दीन के अजमत के खातिर कुर्बान कर दी, उसको दफन कर दिया गया, कुरान ने कहा जिंदा है। अजीब बात है, जिंदा को कभी दफन किया? किसी जिंदा को दफन किया नहीं भाई। जब जान जिस्म से निकल जाएगी तभी तो दफन करोगे। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो, सीना चाक किया गया, कलेजा निकालकर चपाया गया, नाक कान सब काट दिए गए, जिस्म लहू लहान है, जख्मी है, दफन कर दिया गया। कुरान से पूछो वो कहेगा जिंदा। वला हयाउ वला किल्ला तशुरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं। अब क्या फैसला करोगे? अकल कुछ कहती है, कुरान कुछ कहता है, दोनों में तजाद हो। अकल तो ये कहती है जिसके नाक कान कट गए, सीना चीर दिया गया, कलेजा निकाल के चबाया गया, दफन कर दिया गया, अकल कहती है मुर्दा। और कुरान से पूछो कहेगा नहीं जिंदा, जिंदा है। और जो बाजारों में चल रहा है, अकल कहेगी जिंदा है, कुरान ने कहा मुर्दा है। इन नकला तो उसमें उल मऊता, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुर्दों को आप नहीं सुना सकते कलामे रब्बानी। क्या करें? पता ये चला, जिंदगी मुस्तफा की वफादारी का नाम है, जिंदगी मुस्तफा की वफादारी का नाम है। जो रसूल का वफादार है वो कट जाए, मर जाए, जिस्म लहू लहान हो जाए, कब्र में चला जाए, वो जिंदा है। और जो गद्दार है, जमीन पर चल रहा है, कुरान कहता है मुर्दा। तो जिंदगी तो रसूल की वफादारी का नाम है, इसलिए अगर वफादार रहोगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी जिंदा रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूल का वफादार बना। इस वाक्य से यही साबित हुआ। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तेबा करने की तौफीक अता फरमा, इताअत करने की तौफीक अता फरमा, सरकार की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। ए अल्लाह इसी मोहब्बत में जिंदा रहें और इसी मोहब्बत में मौत अता फरमा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।